नमस्कार भारत, आज है 9 मई, दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच केजरीवाल ने आज बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, कहा सत्य की होगी जीत।
आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है जो खुद अपनी पार्टी को खत्म करने पे आमादा है। आज बाजी आप इसी की लगा सकते हैं कि हत्या पहले होगी या आत्महत्या पहले होगी।
बराक ओबामा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फ्लिन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को दी थी चेतावनी। सुनिएगा एक रिपोर्ट फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मैक्रों की प्रेम कहानी पर। हिंसा प्रभावित सहारनपुर के शबीरपुर गांव में पसरा है सन्नाटा, गिरफ्तारी के डर से कई पुरुषों ने छोड़ा गांव।
ना कोई हमें हिंदू मानना है, अगर हम हिंदू होते ना तो यह हमारी दशा नहीं होती। ठीक है,
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए नकद लेने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप से इनकार किया और कहा कि सत्य की जीत होगी। इस बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। यूरोप के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक पेरिस के गार्ड्यू नॉर्द को एक सुरक्षा ऑपरेशन के बीच खाली कराया गया है। फ्रांस के मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक बीआरआई विशेष सुरक्षा बल के सदस्य ट्रेनों की तलाशी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है जिसे फ्रांस के सुरक्षा बल खतरनाक मान रहे हैं। इस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि वो पेरिस जलवायु संधि की रक्षा करेंगे। इमैनुअल मैक्रों की प्रवक्ता लॉरेंस हेम ने कहा कि ट्रंप और मैक्रों के बीच चरमपंथ, नेटो और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बातचीत हुई। ब्रसल्स में इसी महीने के अंत में होने वाले नेटो सैन्य गठबंधन की बैठक में दोनों नेताओं की मुलाकात होने वाली है। मैक्रों आने वाले रविवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बीच कल ही उनके चुनाव के बाद आज उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। पेरिस में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए आए कार्यकर्ताओं में से एक एलियट लेपर्स ने इस बारे में ये कहा। हमें पिछले राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से बहुत उम्मीदें थीं। हमें 3-4 साल ये समझने में लग गए कि वो तो राजनीति की दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीयता को लेकर और श्रम को लेकर जो कानून आए उनसे हमें एहसास हुआ कि वो दूसरी तरफ खड़े हैं। लेकिन हम इमैनुअल मैक्रों के साथ पहले ही दिन उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। ये थे एलियट लेपर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के विद्रोही लड़ाकों के परिवार वालों को और उन लड़ाकों को दमिश्क के बाहरी इलाकों से बाहर भेजने का काम शुरू हो चुका है। सीरिया के विदेश मंत्री वलिद मुअल्लम ने इस बारे में ये जानकारी दी। आज बर्जे के इलाकों से लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है और हम काबून और यारमुक कैंपों से भी लोगों को बाहर निकालने के लिए समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ये थे सीरिया के विदेश मंत्री वलीद मुअल्लम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। वहां समय से पूर्व राष्ट्रपति चुनाव कराया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हे को पद से हटा दिया गया था। वामपंथी रुझान वाले मून जे इन इस चुनाव में साफ तौर पर आगे बताए जा रहे हैं जबकि उन्हें चुनौती दे रहे हैं मध्यमार्गी विचारधारा वाले आन चाल सू। उत्तर कोरिया के साथ हाल के दिनों में बढ़े तनाव के बीच हो रहे चुनाव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। मून जे इन उत्तर कोरिया के साथ संपर्क बढ़ाना चाहते हैं जबकि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति पार्क गुन हे ने प्योंगयांग के साथ हर तरह के रिश्ते खत्म कर दिए थे। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की अपील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी है। हजारों प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उधर कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि वो आज सीबीआई के सामने प्रमाणों के साथ शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा के आज होने वाले विशेष सत्र से सत्य की जीत की शुरुआत होगी। उधर आम आदमी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच विपक्षी दल केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
अपनी सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा के आरोप लगाने के 30 से ज्यादा घंटे बीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर पहली प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने लिखा, जीत सत्य की होगी, कल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से इसकी शुरुआत। इसके पहले ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी कपिल मिश्रा को पार्टी से निलंबित करने का फैसला सुना चुकी थी। पीएसी की बैठक के पहले कपिल मिश्रा लगातार बगावती तेवर दिखाते रहे। वो एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचे, हालांकि ब्यूरो का कहना था कि उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन कपिल मिश्रा ने लगातार वो आरोप दोहराए जो उन्होंने रविवार को लगाए थे। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि वो आज सीबीआई के सामने शिकायत रखेंगे।
इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं वो सारे डिटेल्स सील बंद लिफाफे में, कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा, शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बनके पूरे मामले में खड़ा रहूंगा।
वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री और दूसरे वरिष्ठ नेता कल पूरे दिन कपिल मिश्रा के आरोपों को खारिज करते रहे। कपिल ने सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया था। जैन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। वहीं पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि कपिल के लगाए आरोपों में कोई दम नहीं है।
जो आरोप ही अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, बेबुनियाद है, उन आरोपों का कैसे कोई आदमी आके जबरदस्ती जवाब दे।
आम आदमी पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। कपिल ने इस आरोप को खारिज करते हुए पार्टी नेताओं को चुनौती दी कि वो इसे साबित करके दिखाएं। उधर आम आदमी पार्टी में छिड़े इस घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कपिल मिश्रा के आरोपों के आधार पर केस दर्ज करने की मांग उठाई।
तो हम भी इस बात के समर्थक हैं कि इन तीनों का लाइक डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, कपिल मिश्रा भी करें, केजरीवाल भी करें और सत्येंद्र जैन भी करें, ताकि सच की सच लोगों के सामने आए। हम तो कल से बोल रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए।
आम आदमी पार्टी में चल रहे घमासान और कपिल मिश्रा के आरोपों की गूंज आज दिल्ली विधानसभा में भी सुनाई दे सकती है। वहीं केजरीवाल को विधानसभा के इसी विशेष सत्र से सत्य की जीत की शुरुआत की आस है, जैसी कि उम्मीद उन्होंने ट्विटर पर जाहिर की है।
जानकारी दे रहे थे वात्सल्य राय। आम आदमी पार्टी में जारी संकट को लेकर हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे योगेंद्र यादव से बात की और सबसे पहले पूछा कि मौजूदा घटनाक्रम को वो किस रूप में देखते हैं।
जो हो रहा है बहुत दुखद हो रहा है। दुखद इसलिए हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 3 संभावनाएं जगाई। एक सच्ची ईमानदार राजनीति की, जिसको कोई 2 साल पहले ही दफन कर दिया गया था। एक सुशासन की, जिसे धीरे धीरे शनै शनै समाप्त किया जा रहा है। और फिर एक उम्मीद बची थी कि चलिए कम से कम मोदी या ऐसी शक्तियों का जम के मुकाबला कर सकते हैं, और वो बात भी पंजाब में खत्म हो। तो ऐसे सपने की मौत कुछ अच्छी तो नहीं लग सकती। और ऐसे में एक न्यूनतम चीज जो कर सकते हैं हम सब लोग, कि आम आदमी पार्टी का जहाज भले ही डूब रहा हो, लेकिन हम कम से कम अपना संतुलन न खोएं। हम सही को सही और गलत को गलत करें।
को क्या लग रहा है कि आखेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, या पार्टी खुद अपनी गलतियों के चलते इस हाल में पहुंचती जा रही है?
त्रासदी इस वक्त यही है कि एक तरफ तो देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हर कानूनी, गैर कानूनी, वाजिब, ना वाजिब हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने से तुली हुई है, जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल गलत चीज है, जिसका विरोध होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है जो खुद अपनी पार्टी को खत्म करने पे आमादा है। और दुर्भाग्य ये है कि आज बाजी आप इसी की लगा सकते हैं कि हत्या पहले होगी या आत्महत्या पहले होगी। जो भी होगा बहुत दुखद होगा। ये एक सपने की मौत होगी, और एक सपने की मौत से आप ताली नहीं बजा सकते, उससे आप जश्न नहीं मना सकते। आप सोच सकते हैं, अवसाद कर सकते हैं, सबक सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
ये थे योगेंद्र यादव, जिनका मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल शुभ संकेत कम ही नजर आ रहे हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
रूसी अधिकारियों से संपर्क के बाद छुपाने को लेकर सवालों के घेरे में आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को लेकर अमेरिका में फिर से माहौल गर्म है। फ्लिन को अपनी नियुक्ति के 3 हफ्ते के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसे पहला झटका माना जा रहा था। अब यह भी सामने आ रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप को फ्लिन की नियुक्ति पर चेतावनी पहले ही दे दी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन उल्टे ओबामा पर ही सवाल या निशान लगा रहा है कि क्यों ओबामा ने ही फ्लिन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर माइकल फ्लिन की नियुक्ति को लेकर पहले ही चेताया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पाइसर ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि ये सच है कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि वो माइकल फ्लिन के प्रशंसक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि माइकल फ्लिन ओबामा के लिए काम कर चुके हैं और आईएस और अमेरिका के लिए दूसरे खतरों से निपटने के ओबामा के तरीके की खुले तौर पर आलोचना भी करते रहे हैं, लेकिन शॉन स्पाइसर ने ओबामा प्रशासन की मंशा पर भी सवाल उठाया।
The question that you have to ask yourself really is if President Obama was truly concerned about General Flynn, why didn't he suspend General Flynn?
अगर ओबामा जनरल फ्लिन को लेकर इतने चिंतित थे तो उन्हें कुछ महीनों पहले दी गई सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द क्यों नहीं कर दी गई? फ्लिन को एक संबोधन के लिए रूस क्यों जाने दिया गया जिसके लिए उन्हें वहां से भुगतान भी मिलना था? ये थे शॉन स्पाइसर के शब्द। रूसी अधिकारियों से संपर्क को लेकर जानकारी छुपाने की खबर सामने आने के बाद माइकल फ्लिन को 3 हफ्तों के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था और इसे ट्रंप प्रशासन के लिए पहला बड़ा झटका माना जा रहा था। अमेरिका में पिछले नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के रूस के कथित प्रयासों को लेकर अमेरिका में जांच चल रही है। इसके अलावा ट्रंप के प्रचार से जुड़े लोगों के रूस के साथ संपर्क भी जांच के दायरे में है। वहीं हाल ही में पूर्व कार्यकारी अटॉर्नी जनरल सैली येट्स ने सीनेट के एक पैनल के सामने पेश होते हुए माना कि माइकल फ्लिन के अमेरिका में रूसी राजदूत के साथ संपर्क थे। सैली येट्स ने कहा,
We were concerned that the American people had been misled about the underlying conduct and what General Flynn had done.
General Flynn ने जो किया उसे लेकर हम अमेरिकी लोगों को भ्रमित किए जाने को लेकर चिंतित थे। सिर्फ हम ही नहीं जानते थे बल्कि रूसी अधिकारी भी इस बारे में जानते थे। रूसी अधिकारियों को ये भी पता था कि जनरल फ्लिन ने उपराष्ट्रपति और अन्य लोगों को बहकाया है, क्योंकि मीडिया में दिखाया जा रहा था कि उपराष्ट्रपति वही बोल रहे हैं जो फ्लिन ने उन्हें बताया था। हम ये भी मान रहे थे कि रूसी अधिकारियों के पास इसके सबूत भी थे और हो सकता था कि ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रूसी अधिकारी ब्लैकमेल करें। सैली येट्स के शब्द। सैली येट्स 27 साल से न्याय विभाग की प्रोसिक्यूटर थीं, लेकिन जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया था और सैली येट्स ने इसका समर्थन नहीं किया था। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने येट्स पर मीडिया में जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है।
जानकारी दे रही थी हरिता कांडपाल। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले इमैनुअल मैक्रों की कामयाबी की कहानी बेहद दिलचस्प है। उदारवादी मैक्रों राजनीति में आने के कुछ साल बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति की कुर्सी तक जा पहुंचे हैं। उनका निजी जीवन और प्रेम कहानी भी पूरी दुनिया में उत्सुकता का विषय बने हुए हैं, लेकिन क्यों, बता रहे हैं प्रभात पांडे।
फ्रांस की राजनीति में नया अध्याय लिखने वाले इमैनुअल मैक्रों युवा और करिश्माई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए नीतियों और मुद्दों के साथ साथ उनके चार्म का भी अहम योगदान माना जा रहा है। मैक्रों फ्रांस के गणराज्य के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। वो सिर्फ 39 साल के हैं। इसी उम्र में वो दादा और नाना भी बन चुके हैं, वो भी 7 बच्चों के। दरअसल मैक्रों को ये रिश्ते प्यार की सौगात के तौर पर मिले हैं। राजनीति की दुनिया में अलग लकीर खींचने वाले मैक्रों ने मोहब्बत के ट्रैक पर भी चलन से एक अलग ही रास्ता चुना। तमाम टीनेजर्स की तरह ही इजहार ए मोहब्बत उन्होंने 17 बरस की उम्र में ही किया, लेकिन किसी हमउम्र लड़की से नहीं बल्कि खुद से 24 साल बड़ी एक महिला से। ये महिला है ब्रिजिट, जो आज 64 बरस की हैं और उनकी पत्नी हैं। ब्रिजिट की बेटी लॉरेंस इमैनुअल मैक्रों के साथ स्कूल में पढ़ती थीं। ब्रिजिट उसी स्कूल में टीचर थीं और 20 साल की उम्र में ही उनकी शादी एक बैंकर से हो चुकी थी। लॉरेंस समेत उनके 3 बच्चे थे, इनमें से एक बेटे की उम्र तो मैक्रों से भी 2 साल ज्यादा है। लॉरेंस अक्सर ब्रिजिट से मैक्रों की बुद्धि की तारीफ करती थीं और उनकी बातों से प्रभावित होकर एक दिन ब्रिजिट ने मैक्रों से मिलने का मन बनाया। उस वक्त उनकी उम्र करीब 40 साल थी। एक इंटरव्यू में ब्रिजिट ने बताया,
गेते, कमसा, लगी, लेजोयोज।
वो दूसरों जैसे नहीं थे, वो टीनेजर भी नहीं थे, दूसरे वयस्कों से उनका रिश्ता बराबरी का था।
मैक्रों के कहने पर ब्रिजिट उनके साथ एक ड्रामा लिखने को तैयार हुई। ब्रिजिट के मुताबिक उन्हें लगा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों रिश्ते में बंधते चले गए। मैक्रों के माता पिता समझते थे कि उनका रिश्ता ब्रिजिट की बेटी से है। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वो सकते में आ गए। मैक्रों को आगे की पढ़ाई के लिए एमियंस से बाहर पेरिस भेज दिया गया। मैक्रों के माता पिता ने ब्रिजिट से कहा कि वो उनके बेटे से दूर रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इमैनुअल मैक्रों ने 17 साल की उम्र में ही ये फैसला कर लिया था कि वे ब्रिजिट से ही शादी करेंगे। करीब 24 साल पहले शुरू हुआ ये प्यार शादी के मुकाम पर 10 साल पहले ही पहुंचा। ब्रिजिट का अपने पहले पति से साल 2006 में तलाक हुआ और साल 2007 में उन्होंने मैक्रों से शादी की। मैक्रों के अपने कोई बच्चे नहीं, लेकिन शादी के बाद बड़ा परिवार उनके साथ बंध गया है। मैक्रों अपनी पत्नी ब्रिजिट की सलाह को हमेशा अहमियत देते हैं, वहीं ब्रिजिट उनमें जो खूबियां देखती हैं, वही आज फ्रांस के मतदाताओं को भी उनमें नजर आती हैं। चुनाव नतीजे के बाद मैक्रों के एक समर्थक ने कहा,
हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मैक्रों को वोट दिया। वो एक युवा राष्ट्रपति हैं जो कि महत्वाकांक्षी और खुले विचारों के हैं। वो देश को बांटने के बजाय लोगों को जोड़कर रखने में यकीन रखते हैं।
ये थे मैक्रों के एक समर्थक के शब्द। फ्रांस को मैक्रों से बहुत उम्मीदें हैं और मैक्रों को उम्मीद है कि वोटरों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए ब्रिजिट उनकी हम कदम रहेंगी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के पहले ही इमैनुअल मैक्रों ऐलान कर चुके थे कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो ब्रिजिट भी कोई अहम भूमिका जरूर निभाएंगी।
फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निजी और सार्वजनिक जीवन के बारे में ये थी प्रभात पांडे की रिपोर्ट।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में आपराधिक साजिश रचने का मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने चारा घोटाले में लालू के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने के लिए अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर ही यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि लालू के खिलाफ बाकी के चारा घोटाले में अलग अलग जांच जारी रहेगी। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से बात की और सबसे पहले पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लालू प्रसाद यादव के लिए कितना बड़ा झटका है।
देखिए, लालू यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि सारे ये जो कंस्पिरेसी वाला केस है वो दोबारा ट्रायल में जाएगा और जितने केसेस हैं उनको टाइम बाउंड कर दिया है कि 9 महीने में इनको निपटाया जाए, तो एक फास्ट ट्रैक पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डाल दिया गया है। अब पॉलिटिकली लालू यादव नरेंद्र मोदी और भाजपा के फॉरमोस्ट अपोनेंट्स में से हैं और लालू यादव की वजह से ही एक कारण है के भाजपा बिहार में हारी थी, क्योंकि जब मोहन भागवत ने आरक्षण का मामला उठाया था तो लालू बहुत फुर्ती से उसमें कूदे थे और उसको इश्यू बना लिया था, तो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था ये। तो लालू का जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, शुरू से ही उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया है और बहुत ही शानदार कम्युनिकेटर भी हैं और जो उनकी बेस थी, बीच में जो लोग चले गए थे, इस बार बिहार के इलेक्शंस में मुस्लिम यादव वापस आया है। आज हालांकि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि एक केस में कन्विक्शन है उनका, उसकी वजह से तो अपने आप तो नहीं सामने आ सकते, लेकिन अपोजिशन में एक रोल रह सकता है। अब अगर लालू यादव को कन्विक्शन हो गए 9 महीने के बाद, और बहुत अहम चुनाव अगले साल भी हैं, 2019 में भी हैं, और लालू ने पहल की है, उन्होंने मायावती से डायरेक्टली बात की थी फोन उठा के कि अब अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, ये जो हाल के यूपी के चुनावों के बाद, तो लालू यादव के लिए बहुत भारी झटका है और मैं मानती हूँ अपोजिशन के लिए भी ये झटका है, एक सेटबैक है।
राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के चेहरे और उन्हीं के इर्द गिर्द खड़ी हुई एक पार्टी है, पार्टी पर कितना असर होगा?
देखिए, अगर तो कन्विक्शन होती है किसी भी केस में 9 महीने के बाद, अभी 9 महीना तो उतना असर नहीं होगा, लेकिन अगर होती है तो पार्टी पे बहुत जबरदस्त असर होने वाला है, मोराल पे भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन पे भी होगा। हालांकि उनके जो एक बेटा है तेजस्वी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो काफी संभाल रहे हैं जिम्मेवारी को।
गठबंधन जो बिहार में इस समय चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जिसकी सरकार भी चल रही है, क्या इस गठबंधन की सेहत पर भी कोई असर होगा?
बिल्कुल, अगर राजद की सेहत पे असर होता है, राजद कमजोर होती है और लालू को सीन से आप निकाल लेते हैं 9 महीने के बाद, अगर कुछ ऐसा होता है, उनको कन्विक्शन होती है किसी भी केस में, तो जाहिर है कि गठबंधन के ऊपर असर होने वाला है और सरकार के ऊपर असर होने वाला है।
इन स्थितियों से क्या राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी को कोई फायदा होगा गठबंधन के अंदर या गठबंधन के बाहर?
मुझे लगता है लालू यादव और नीतीश कुमार का इकट्ठा होना ही मजबूती लाता है गठबंधन में, और अगर लालू कमजोर हो गए तो अभी उनके बेटे उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं कि पूरी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रदेश में उसको उसी तरह से संभाल सके, तो मुझे लगता है ओवरऑल कमजोरी होगी गठबंधन और सरकार बनिस्बत मजबूत होने के, फायदा मिलना नीतीश कुमार को, फायदा मिलेगा तो फिर इसका भाजपा को मिलेगा।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। और अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या खास है, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं हरिता कांडपाल। जी हरिता
जी, आज के अखबारों की बात करें तो बहुत सारी खबरें मैं देख रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जिस पर अभी हम बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव। द हिंदू ने एक खबर छोटी सी लिखी है कि भाजपा जो है अब नीतीश कुमार के करीब जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने जो कि वहाँ पे बीजेपी के नेता हैं बिहार में, उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश जो है वो लालू के साथ गठबंधन तोड़ देते हैं तो हो सकता है कि उनकी तरफ जो है हाथ बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सके। ये खबर है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन आज मैं देख रही हूँ कि ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर चरमपंथियों के अड्डों को बंद नहीं करते हैं, सुन्नी चरमपंथियों पर लगाम नहीं कसता है पाकिस्तान, तो ईरान खुद जो है ये काम करेगा और पाकिस्तान में चरमपंथी अड्डों पर हमला करेगा। इसके अलावा जनसत्ता ने लिखा है कि जस्टिस कर्णन को कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य जजों को 5 साल की सजा सुनाई है। इनके ऊपर जो है अदालत की अवमानना का जो मामला स्वतः संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने लिया है, उसके जवाब में उन्होंने ये
लगातार विवादों में बने हुए हैं।
दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 10 साल में 2,37,00,000 प्रतियों के साथ प्रिंट मीडिया जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है, और जो इंटरनेट और उससे जो कड़ी चुनौती मिल रही है उसमें भी प्रिंट मीडिया जो है एकदम लगातार मजबूती के साथ बना हुआ है। और मेट्रो ट्रेन दिल्ली की जो है वो भी खबरों में है। जनसत्ता ने लिखा है कि बुधवार से यानी कि कल से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के किराए बढ़ाए जाएंगे, करीब 66% की बढ़ोतरी की जा रही है, और अखबार लिखता है कि 2009 के बाद ये पहली बार जो है किराए बढ़ाए जा रहे हैं दिल्ली में,
यानी जो लोग रोज दफ्तरों में जाते हैं और ट्रैवल करते हैं उन पर उनकी जेब पर मार पड़ने वाली
थोड़ी सी मार पड़ने वाली है। और SBI ने जो सस्ते मकानों की होम लोन ब्याज दर जो है वो घटा दी है, 0.25% घटा दी है, और महिलाओं को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखबारों की समीक्षा के लिए हरिता। आगे बढ़ते हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप पीड़ित बिल्किस बानो कल दिल्ली में थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के 14 लोगों का कत्लेआम देखा था। बीते हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप और हत्या के मामले में 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा पर करार रखी थी। हमारे सहयोगी उर्दू सेवा के जो सहयोगी हैं शकील अख्तर, उन्होंने बिल्किस बानो से बात की और सबसे पहले फैसले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए।
मेरा ये फैसला है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिया और बहुत हम उससे खुश हैं, और हमको आगे जाना पड़ेगा सुप्रीम तक, तो हम जाएंगे।
अच्छा, बहुत से आपके साथ बहुत से दूसरी भी औरतें थीं गुजरात के दंगों के दौरान जिन्हें रेप का इस तरह के सामना हुआ था, और उनके साथ अभी बहुत से लोगों का इंसाफ नहीं मिल सका है, आप क्या कहती हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे इंसाफ उनको भी मिले और जल्दी से जल्दी मिले।
ये बताइए कि पिछले 15-20 सालों में काफ़ी मुश्किल हालात से गुजरे, ये कैसा वक्त रहा है, कैसे गुजर रही है और आप क्या करने जा रहे हैं?
बहुत बहुत ख़राब गुजरी है हमारी हालत, और किधर जाए, कहाँ जाए, कैसे रहेंगे, ये बहुत धमकियाँ आ रही थी, बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि आरोपी लोग को पैरल मिलती थी, वो लोग पैरल पे आते रहते थे, तो हमारे गांव वालों को वो भी बहुत डर था, हमको भी बहुत डर था।
ये थी गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गांव शब्बीरपुर में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा है। बीते शुक्रवार को महाराणा प्रताप जयंती पर राजपूत और दलित समुदायों के बीच तनाव के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कई गिरफ्तारियों और गांव में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद हालात अभी तक सामान्य नहीं हो सके हैं। गिरफ्तारी के डर से कई पुरुष गाँव छोड़कर भाग गए हैं और पीछे रह गई हैं उनकी महिलाएं। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
दो घर, एक बड़े बेटे का और एक छोटे का, दोनों की बिना प्लास्टर की दीवार पर आगजनी के निशान दो दिन बीत जाने पर भी ताजा हैं, और ओमवती का विलाप। कुछ ही दिनों पहले ब्याह कर आई ओमवती की बहू किसी तरह जान बचाकर भागी। अब घर में बस वो हैं और बड़े बेटे के आंगन में खड़ी सहमी नजरों से सबको देखती अकेली खड़ी वो गाय। मग्गू ओमवती की पड़ोसन है।
कोठों पर कुछ अड़का आग लगाई उन्होंने, बड़ा लंडे का घर इसका ही हुआ है, इसमें आग लगाई, फिर छोटे का बुढ़िया के, दो लड़के थे इसका।
राजपूत युवक शक्ति, जो हमें राजपूत टोली की तरफ मिले थे, कहते हैं
आग तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आग शुरू करी, स्कूटी फूंकी पुलिस वालों की, आग तो उन्होंने शुरू कर दी थी।
लेकिन आधी सिकी रोटी, एक पांव आग की नजर हो गई जींस, कमरे में बिखरा अनाज, नोकीले हथियारों से भेदी गई खिड़कियां और आंगन में अकेली बंधी वो गाय, कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। पास के गांव सिमलाना जा रही म्यूजिक सिस्टम के साथ राजपूतों की वो टोली दलितों और राजपूतों के बीच विवाद, पत्थरबाजी और फिर कथित रूप से दूसरे गांव के सैकड़ों युवकों का शब्बीरपुर में जमा होना और हमला करना, मामला हत्या का भी बन रहा है। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 दलित हैं। सरोज कहती हैं,
मेरा पति पाजा जी, उसे भी सुबह उठा ले गए पुलिस वाले, 4 मेरा लड़की जी, वे भी पता नहीं कहीं रिश्तेदारी में, कहीं जंगल बाहर में, 2 मेरी लड़की जवान और 2 मेरी छोटी छोटी जागती हो, क्या पता किक्कर बिगड़ते फिरा किक्कर नहीं।
राजपूत टोली की विमलेश हमें गाँव के एक चौराहे पर मिलती है।
मेरा बच्चा नाबालिग है जी, 17-18 साल का बच्चा होगा, और खेत में से आया था जी, वो सोते हुए को ऊपर से ले गई पुलिस उसे।
सविता भी विमलेश के साथ हैं, उस कम से कम 100 राजपूत औरतों की टोली का हिस्सा जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया था।
मेरे पति को भी ले गए जी, जेठ को भी ले गए, घर में 2:30 बजे के करीब में अंदर कूद गए नीरे सड़े, उन्होंने हमारी मच्छरदानियां उगाड़ उगाड़ का बिल्कुल, वे उठाकर उन्हें ले गए इसी तरह, अभी भी नहीं कपड़ों के चलो।
आक्रामक रुख अख्तियार करती भीड़ को देख पुलिस की वहां तैनात टुकड़ी हमें वहां से जाने को कहती है। पास के टोले में लेकिन लगभग सन्नाटे का माहौल है, या फिर रोने की आवाज़ें। मग्गो हमसे कहती हैं,
अन्य कभी नहीं ऐसा हुआ जी, हम इनके खेती में हम करते हैं, देखो जी कितना हम तो इनके खेती में गेहूँ काट रहे जी, हमारे घरों में आग लगा रहे, बता क्या जिंदगी हमारी,
जमीन होती तो 2000 रुपये हुई किसी का, इतनी मेहनत में दिक्कत नहीं, हम करते जब हमारे पास जमीन होती थी।
दलित बेहद नाराज है, हिंदू वोट बैंक को और बड़ा करने की कोशिश में लगी बीजेपी को देश राज सिंह जैसे दलितों के मन को समझने की जरूरत है, वरना
ना कोई हमें हिंदू मानना, अगर हमें हिंदू मानते तो यह दशा नहीं करते, अगर हम हिंदू होते ना तो यह हमारी दशा नहीं होती, ठीक है।
फैसल मोहम्मद अली, BBC, शब्बीरपुर गांव, सहारनपुर।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। यूरोप के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक पेरिस की कार्ड्यू नॉर्थ को एक सुरक्षा ऑपरेशन के बीच खाली कराया गया। फ्रांस के नव निर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की और कहा कि पेरिस जलवायु संधि की रक्षा करेंगे। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।